بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس ناول کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول گریٹ سرکل ریکارڈ کر رہے ہیں. اس ناول کے مصنف ظہیر احمد ہیں. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 03212138225, 03002919600 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. محترم قارئین, السلام علیکم. میرا ناول گریٹ سرکل آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ ناول ایک نئے انداز اور نئی جہت سے لکھا گیا ہے. اس ناول میں آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر میں پہلی بار شاگل کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. میں آپ کی خواہشات کو کس حد تک پایۂ تکمیل تک پہنچا سکا ہوں اس کا اندازہ تو آپ کو ناول پڑھ کر ہی ہو جائے گا. میرے سابقہ ناولوں کو جس طرح سے پذیرائی دی جا رہی ہے اس کے لیے میں آپ سب کا دل سے مشکور ہوں. آپ کو میرے لکھے ہوئے علی عمران, کرنل فریدی اور میجر پرمود کے مشترکہ ناول گولڈن کرسٹل کا, جو گولڈن جوبلی نمبر ہے, جس شدت سے انتظار ہے اس کا اندازہ مجھے آپ کے بھیجے ہوئے خطوط سے ہو رہا ہے. گھبرائیں نہیں, ناول مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے ماہ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. اس ماہ بھی آپ کی خدمت میں دو ناول پیش کیے جا رہے ہیں. اس ماہ میرا دوسرا ناول موت کا سایہ ہے, جو ماورائی سلسلے کا ناول ہے, اور یہ میرے سابقہ لکھے ہوئے ناول سیاہ چہرے ہی کی ایک کڑی ہے, جسے آپ سب نے بے حد پسند کیا تھا اور اس کے لیے مجبور کیا تھا کہ عمران کٹانگا دیوی کو اس قدر آسانی سے کیوں فنا کر دیتا ہے. اس کا کردار تو بے حد شاندار اور طاقتور تھا, اسے مزید چلنا چاہیے تھا. آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے میں نے اسی سلسلے کا دوسرا ناول تحریر کرنا شروع کر دیا تھا, جو اب گریٹ سرکل کے ساتھ شائع ہو گیا ہے. اب آپ کے خطوط اور ان کے جوابات. السلام علیکم, سائرہ نسیم راولپنڈی سے لکھتی ہیں. آپ کے ناول اپنی مثال آپ ہیں. آپ دوسرے ایسے مصنف ہیں جن کے ناول میں اور میرے گھر والے بے حد شوق سے پڑھتے ہیں. آپ سے میری بس اتنی التجا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ناول لکھنا چھوڑ دیں اور بڑے بڑے ناول لکھا کریں. چھوٹے ناول جلد ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اگلے ماہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ موٹے موٹے ناول لکھیں, جس کے ختم ہونے تک مارکیٹ میں آپ کے اور ناول آ جایا کریں. امید ہے آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے اور ہر ماہ بڑے بڑے ناول لکھا کریں گے. محترمہ سائرہ نسیم صاحبہ, آپ کا خط لکھنے کا بے حد شکریہ, اور میں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کا بھی شکر گزار ہوں جو میرے لکھے ہوئے ناولز کو پسند کرتے ہیں. آپ نے مجھے بڑے بڑے اور موٹے ناول لکھنے کے لیے کہا ہے, تو اس کے لیے عرض ہے کہ ہر کہانی کا ایک مخصوص ٹیمپو ہوتا ہے اور کہانی اپنی کردار نگاری کے تحت آگے بڑھتی ہے. ان میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آگے بڑھانے سے سوائے صفحات کالے کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ناول کا اختتام مخصوص پیرائے نہیں ہو, جس سے قارئین کو بوریت محسوس نہ ہو. بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور مسلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. پہلے ایک دور تھا جب عام کہانیوں کی طرح عمران سیریز بھی سلسلے وار شائع ہوتا رہا ہے, لیکن ایک ناول کے بعد دوسرے ناول کا انتظار کرنا, اور وہ بھی کسی حصے کا, بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ناول ایک ہی جلد میں ہو اور مکمل ہو. ان میں کوئی چھوٹا ناول ہوتا ہے اور کوئی بڑا. چھوٹا ناول تو ہر کوئی خرید لیتا ہے, لیکن بڑا اور موٹا ناول خریدنا دل گردے کا کام ہے, کیونکہ جتنا ناول موٹا ہوگا اسے خریدنے کے لیے اتنی ہی بڑی رقم درکار ہوگی, جو آپ شاید افورڈ کر سکتی ہو لیکن کوئی اور نہ کر سکتا ہو, تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کی فرمائش پوری کر سکوں. امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتی رہیں گی. فہیم صدیقی ناصر آباد سے لکھتے ہیں. آپ کے ناولوں کا میں ہی نہیں, میرے بے شمار دوست دیوانے ہیں. آپ کے آنے والے ناولوں کا جتنا ہمیں انتظار ہوتا ہے شاید ہی کسی اور کو ہو. आप इंतहाई दिलचस्प और आसान पैराए में लिख रहे हैं, जिससे दिन ब दिन आपके नॉवेल पढ़ने वाले कारईन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मोहतरम फहीम सिद्दीकी साहब, नॉवेलों को की पसंदीदगी और खत लिखने का शुक्रिया। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अपना हर नॉवेल पहले लिखे हुए नॉवेल से मुनफरिद और इंतहाई अछूते अंदाज में लिखूं। ये हर कहानी की डिमांड होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते खुद बनाती चली जाती है। बास कहानियां तो ऐसी होती हैं जो मुझे भी अपने धारे में साथ बहा ले जाती हैं, और नॉवेल एक यादगार और इंतहाई इनफरादियत का हामिल बनकर सफाहे किरतास पर उभर आता है। मैं अपनी इस कोशिश में लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह लगा रहूंगा। आप बस मेरे हक में दुआ करते रहा करें। उम्मीद है आप आइंदा भी खत लिख के रहेंगे। सलीम जाहिद गिजरी कराची से लिखते हैं, मैं सिवाय मजहर कलीम के किसी और मुसन्निफ के नॉवेल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। मुझे यकीन था कि सिवाय मजहर कलीम के कोई दूसरा राइटर इमरान और उसके साथियों के साथ वो इंसाफ नहीं कर सकेगा जो मजहर कलीम का खाता है। मेरे दोस्त बहुत इसरार करते थे कि मैं आपका भी लिखा हुआ एक नॉवेल पढ़ूं, जिसे पढ़ते हुए इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो नॉवेल मजहर कलीम का है या नहीं, बल्कि किसी और का लिखा हुआ है। मैं उनकी बात टाल देता था और नॉवेल ला कर साइड में रख देता था। फिर एक दिन मुझे पढ़ने के लिए कोई नॉवेल ना मिला तो मैंने चारों नाचार आपका नॉवेल उठा लिया। ये नॉवेल ग्रीन वायरस था जो आपने काफिरिस्तान के खिलाफ लिखा था। नॉवेल पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें मैं ये भूल ही गया कि मैं किसका नॉवेल पढ़ रहा हूँ। इस नॉवेल में मजहर कलीम के लिखे हुए नॉवेलों की तरह ऐसी चाशनी थी जो मेरे जहन में घुलती चली गई और मैं रुके बगैर आपका नॉवेल पढ़ता चला गया। नॉवेल के अख्ताम पर मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे ये नॉवेल उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए था जब मेरे दोस्तों ने मुझे ये दिया था। मेरा ये नजरिया गलत साबित हो गया कि मजहर कलीम साहब के तर्ज उसलूब को कोई और समझ ही नहीं सकता और ना उन जैसा नॉवेल कोई लिख सकता है। आपके नॉवेलों में हर वो चीज मौजूद है जो मजहर कलीम के नॉवेलों का खासा होती है। यकीन करें इसके बाद आपका लिखा हुआ शायद ही कोई ऐसा नॉवेल होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे जैसे वो तमाम दोस्त गलत सोचते हैं कि मखसूस किरदारों पर सिवाय एक मुसन्निफ के दूसरा कोई मुसन्निफ ऐसा नहीं लिख सकता। आपने वाकई मजहर कलीम के शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है। आपका शायद ही कोई ऐसा नॉवेल हो जिसे पढ़कर ये गुमान होता हो कि ये नॉवेल मजहर कलीम का नहीं बल्कि किसी और का है। मेरी और मेरी तमाम दोस्तों की दुआएं आपके साथ हैं। मोहतरम सलीम जाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपके खत लिखने और नॉवेलों की पसंदीदगी का शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात मेरे नॉवेल ना पढ़ने की, तो ये बात मेरे भी इल्म में आई है कि ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मेरे 50 से ज्यादा नॉवेल लिखे जाने के बावजूद उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते, और कुछ दोस्त तो ऐसे भी हैं जो मुझे कल का बच्चा समझते हैं। मैं मानता हूँ कि जनाब मजहर कलीम जैसा मुसन्निफ पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में भी नहीं हो सकता, लेकिन वो जिन किरदारों पर लिखते हैं इस पर बहुत से मुसन्निफीन ने तबा आजमाई की है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि जनाब इब्ने सफी जैसा कोई नहीं, इब्ने सफी के नॉवेलों के सिवा वो दूसरे मुसन्निफीन के नॉवेलों को हाथ भी नहीं लगाते थे। फिर वक्त आया तो उनके नजदीक मजहर कलीम के सिवा दूसरा पाए का कोई मुसन्निफ नहीं था, क्योंकि मजहर कलीम ने अपनी काविशों से कारईन के दिल जीते थे। और आज वो दौर है कि लोग मजहर कलीम को ही मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि इमरान सीरीज लिखते हुए उन्हें निस्फ सदी से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। मैं तो अभी इस मैदान में नया हूँ। नया होने के बावजूद मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे लिए भी इन कारईन के दिलों में इतनी ही जगह बन जाएगी जो इनके दिलों में जनाब इब्ने सफी और मजहर कलीम के लिए है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद। उम्मीद है आप आइंदा भी खत लिखते रहेंगे। शहजाद अंजुम जिनाह रोड कोयटा से लिखते हैं, मैंने अब तक आपके लिखे हुए तमाम नॉवेल पढ़े हैं। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो आपके नॉवेल बेहद शौक से पढ़ते हैं। मैं आपसे बरमला कह सकता हूँ कि मेरी तरह मेरे तमाम दोस्त आपके नॉवेल बेहद पसंद करते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों की फरमाइश पर आपको खत लिख रहा हूँ। आप वाकई इस दौर के नामवर मुसन्निफ हैं जो अपने नॉवेलों में जिद्दत देने के साथ साथ नई नई मालूमात भी फराहम करके हमें मशहूर करके रख देते हैं। आपके गोल्डन जुबली नंबर का शिद्दत से इंतजार है, जो यकीनन अपने नाम गोल्डन क्रिस्टल की तरह इंतहाई शानदार और खूबसूरत होगा। कब आ रहा है आपका गोल्डन जुबली नंबर? मोहतरम शहजाद अंजुम साहब, आपका और आपके दोस्तों का खत लिखने और नॉवेलों की पसंदीदगी का शुक्रिया। मैं नॉवेलों में जिद्दत लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुताला और मुशाहदात करता रहता हूँ। यही वजह है कि मैं अपने नॉवेलों में वो तमाम मालूमात फराहम करने में कामयाब हो जाता हूँ जिनका ताल्लुक हकीकत की दुनिया से होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे दोस्त मेरी दी हुई मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। रही बात गोल्डन जुबली नंबर, गोल्डन क्रिस्टल की, तो बिरादरम इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। नॉवेल की अशात का काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह अगले माह मेरा लिखा हुआ तवील तरीन नॉवेल, जो 1000 सफ़ात से जायद का हामिल है, आपके हाथों में होगा और ये नॉवेल आपके जौक और आपके आला मयार के ऐन मुताबिक होगा, जिसे पढ़कर आप सराहे बगैर नहीं रह सकेंगे। उम्मीद है आप आइंदा भी खत लिखते रहेंगे। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन। आपका मुखलिस ज़हीर अहमद। काफ्रिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस की जहाजी साइज की मेज के पीछे बैठे थे। उनकी आंखों पर नजर का चश्मा था जिसे और वो अपने सामने पड़ी हुई फाइल पर झुके इन हमाकी से अपने उसे पढ़ने में मसरूफ थे। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक कलम था जिससे वो फाइल पढ़ते हुए मुख्तलिफ जगहों पर निशानात लगा रहे थे। उनकी सारी तवज्जा फाइल पर थी कि अचानक फोन की मुतरन्नुम घंटी बज उठी। उन्होंने चौंक कर फोन की तरफ देखा। मेज पर कई रंगों के फोन सेट रखे हुए थे। उन फोन सेटों में से सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज रही थी। उस फोन पर लगा हुआ एक बल्ब भी स्पार्क कर रहा था जिससे प्राइम मिनिस्टर को मालूम हो जाता था कि किस फोन की घंटी बजी है, वरना मेज पर रखे हुए तमाम रंगों के फोन सेटों की घंटी एक जैसी थी, जिससे प्राइम मिनिस्टर को इस बात का इल्म नहीं होता था कि किस फोन की घंटी बजी है। सुर्ख रंग के फोन सेट की घंटी बजते देखकर प्राइम मिनिस्टर ने एक तवील सांस लिया और आंखों पर लगी हुई ऐनक उतार कर मेज पर रख दी। ये फोन सेट डायरेक्ट प्रेसिडेंसी से मुताल्लिक था। इससे काफ्रिस्तानी प्रेसिडेंट किसी भी अहम और गैर अहम मामले के लिए उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते थे। ऐनक उतार कर प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ काफ्रिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दबंग लहजे में कहा। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ जनाब, आपसे प्रेसिडेंट साहब बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, प्राइम मिनिस्टर ने इसी अंदाज में कहा। यस सर, एक मिनट होल्ड करें, मैं कॉल प्रेसिडेंट साहब को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। उसी लम्हे क्लिक की आवाज के साथ रिसीवर में मुतरन्नुम मौसीकी की आवाज सुनाई दी और फिर दूसरे ही लम्हे मौसीकी की आवाज खत्म हो गई। प्रेसिडेंट ऑफ काफ्रिस्तान बोल रहा हूँ, उसी लम्हे रिसीवर से प्रेसिडेंट ऑफ काफ्रिस्तान की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ जनाब, प्राइम मिनिस्टर ने मुअद्दब अंदाज में कहा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मसरूफ न हो तो कुछ देर के लिए आप प्रेसिडेंट से तशरीफ ले आए, मुझे आपसे एक अहम सिलसिले में बात करनी है, प्रेसिडेंट ने कहा। यस सर, मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर ने इसी अंदाज में कहा। और हाँ, आते हुए आप अपने साथ सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर शागल को भी लेते आए, मैं आपकी मौजूदगी में उन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट ने कहा। कैसी जिम्मेदारी, प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर कहा। जब आप दोनों मेरे पास आएंगे तब मैं इस जिम्मेदारी के बारे में बताऊंगा, प्रेसिडेंट ने कहा। यस सर, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी चीफ शागल को फोन करके उसे यहाँ बुला लेता हूँ और जैसे ही वो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें लेकर आपके पास पहुँच जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ओके, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने कहा और फिर उन्होंने रब्ता खत्म कर दिया। रब्ता खत्म होते ही प्राइम मिनिस्टर ने एक तवील सांस लेते हुए कान से रिसीवर हटा लिया। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो सकती है जो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे और चीफ शागल को एक साथ बुलाया है, और वो चीफ शागल को कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हे वो रिसीवर हाथों में पकड़े सोचते रहे, लेकिन जब उनकी समझ में कुछ न आया तो उन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर उन्होंने साइड पर पड़े हुए इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस सर, रब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से उनके मिलिट्री सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। मेरी सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल से बात कराओ फौरन, प्राइम मिनिस्टर ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा और प्राइम मिनिस्टर ने बटन प्रेस करके इंटरकॉम ऑफ कर दिया। चंद लम्हों के बाद मेज पर पड़े हुए नीले रंग के फोन की घंटी बज उठी, तो घंटी बजते ही फोन पर लगा नीला बल्ब स्पार्क करना शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग। प्राइम मिनिस्टर ने रिसीवर कान से लगाते ही इंतहाई करस्त लहजे में कहा, शागल बोल रहा हूँ जनाब, चीफ ऑफ काफ्रिस्तान सीक्रेट सर्विस। दूसरी तरफ से शागल की इंतहाई मुअद्दबाना और हैरत भरी आवाज सुनाई दी। उसका मुअद्दबपन तो प्राइम मिनिस्टर की जात के लिए था, लेकिन उसकी हैरत शायद इस बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर ने उसे इस तरह तवील अरसे के बाद डायरेक्ट कॉल की थी। मिस्टर शागल, आप फौरन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुंच जाए, हमें फौरी तौर पर प्रेसिडेंसी जाना है। प्रेसिडेंट साहब ने मेरे साथ आपको भी तलब किया है, वो आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा, ओह यस सर, मैं अभी पहुंच जाता हूं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब मुझे क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं? क्या इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया? शागल ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। उसका यह सुनकर ही सैरो खून बढ़ गया था कि प्रेसिडेंट साहब उसे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, वरना पिछले काफी अरसे से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने शागल को पूछना ही छोड़ दिया था। वो आए दिन मुल्की हालात से निपटने और गैर मुल्की अनासिर का खात्मा करने के लिए नई से नई एजेंसियां कायम करते रहे थे और इन्हीं पर भरोसा करते थे, इसीलिए इन दोनों ने काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस का नाम भी लेना छोड़ दिया था। अब अचानक न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने शागल को डायरेक्ट फोन कर दिया था, बल्कि वो ये भी बता रहे थे कि प्रेसिडेंट साहब उसे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। इसलिए शागल का खून बढ़ना ही था, साथ ही उसका सीना भी कई इंच फूल गया था। नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है, वो कह रहे हैं कि जब हम प्रेसिडेंसी पहुंचेंगे तब वो हमें बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। ओके सर, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनटों में आपके पास पहुंच रहा हूँ, शागल ने अपनी मुसर्रत दबाते हुए कहा। ओके, मैं आपका मुंतजर हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने सपाट लहजे में कहा और फिर उन्होंने शागल का जवाब सुने बगैर रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। प्राइम मिनिस्टर ने शागल से बात करने के बाद इंटरकॉम पर मिलिट्री सेक्रेटरी को हिदायत दी ताकि वो उनके प्रेसिडेंसी जाने का प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम कर सके। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद शागल उनके ऑफिस में था। शागल का चेहरा मुसर्रत से खिला पड़ रहा था। प्राइम मिनिस्टर उसे देखते ही उठ खड़े हुए और फिर वो शागल के साथ चलते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर सीधे हेलीपैड की जानिब बढ़ते चले गए। चंद ही लम्हों में उनका हेलीकॉप्टर निहायत तेज रफ्तार से प्रेसिडेंसी की जानिब उड़ा चला जा रहा था। अगले आधे घंटे के बाद वो प्रेसिडेंसी के स्पेशल रूम में बैठे थे। यहाँ इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी ने पहुंचाया था। वो भी स्पेशल रूम में आकर बैठे ही थे कि उसी लम्हे प्रेसिडेंट साहब बावकार अंदाज में चलते हुए अपने मखसूस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर प्राइम मिनिस्टर और शागल एक साथ उनके एहतराम में उठकर खड़े हो गए। बैठे, प्रेसिडेंट ने आगे बढ़कर उनसे बारी बारी मुसाफा करते हुए कहा और अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठ गए। उनके बैठते ही पहले प्राइम मिनिस्टर और फिर शागल भी बैठ गया। आप दोनों को मैंने खुसूसी तौर पर एक अहम बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। ये बात एक नई और अनोखी साइंसी ईजाद के बारे में है जो काफ्रिस्तान के एक नामवर और मायानाज साइंसदान ने की है। ये साइंसदान कई बरसों से सरकारी इजाजत से खुफिया तौर पर अपनी जाती लेबोरेटरी में एक अहम ईजाद में मसरूफ थे जिसमें आखिरकार उन्हें कामयाबी हासिल हो गई है। उनकी ईजाद इस कदर हैरानकुन और यूनिक है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट साहब ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। आप कौन से साइंसदान की बात कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी कौन सी ईजाद की है जो अनोखी और यूनिक है, प्राइम मिनिस्टर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं प्रोफेसर भानु प्रताप की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ने जवाब देते हुए कहा। ओह, ये वही साइंसदान है ना जिन्होंने चंद बरस कबल सरकारी लेबोरेटरी से रिटायरमेंट हासिल कर ली थी और हुकूमत से एक जाती लेबोरेटरी बनाने की दरख्वास्त की थी और हुकूमत ने उनकी इस्तदा मान भी ली थी, प्राइम मिनिस्टर ने सोचते हुए कहा। हाँ, मैं उन्हीं प्रोफेसर भानु प्रताप ही की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सरकारी लेबोरेटरी से रिटायरमेंट लेकर जाती लेबोरेटरी बनाने की सिफारिश इसलिए की थी कि वो अपने तौर पर कुछ ऐसा ईजाद करना चाहते थे जो मुल्क और कौम के मफाद के लिए अहम और इंतहा यूनिक हो, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। क्या है उनकी ईजाद, शागल से रहा न गया तो उसने पूछ ही लिया। उन्होंने एक ऐसी गन ईजाद की है जिससे नजर न आने वाली ऐसी रेज निकलती है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को लम्हों में जलाकर खाकिस्तर कर देती है। इस रेज से न सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को लम्हों में जलाकर खाकिस्तर किया जा सकता है बल्कि इस गन से फजा में हजारों फीट की बुलंदी पर मौजूद तैयारों को भी एक लम्हे से भी कम वक्त में तबाह किया जा सकता है। इस गन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस गन से किसी चटियल पहाड़ पर भी रेस फायर की जाए तो उससे एक लम्हे में पहाड़ में सुराख बन जाएगा। सुराख का दरमियानी हिस्सा जो ठोस चट्टानों पर मुश्तमिल होगा वो जलकर राख हो जाएगा। इस गन से निकलने वाली रेस की रेंज 2000 मीटर तक है। इस 2000 मीटर की रेंज में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती है, जिससे सामने आने वाली बड़ी से बड़ी फौज का एक लम्हे में सफाया किया जा सकता है, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। ओह गुड शो, ऐसी गन की मौजूदगी में तो हम एटमी पावर से भी ज्यादा पावर हासिल कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने खुश होते हुए कहा। कर लेंगे नहीं, हमने ये पावर हासिल कर दी है। इसीलिए प्रोफेसर भानु प्रताप ने इस जदीद और मौसर गन को हॉट गन का नाम दिया है, जिससे हमारा मुल्क सुपर पावर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर आ जाएगा। हमारी पावर एक क्रीमिया की पावर से भी 1000 गुना बढ़ जाएगी, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। यस सर, इस गन की बदौलत तो हम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। किसी भी मुल्क को इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो काफ्रिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, खासतौर पर पाकिस्तान, जो हम पर एटमी ताकत होने की धाक जमाए बैठा रहता है। इसकी तो रातों की नींद और दिन का सुकून ही बर्बाद हो जाएगा, शागल ने मुसर्रत से दांत निकालते हुए कहा। हाँ, इस रेस की बदौलत पाकिस्तान जंगी सलाहियत में हमसे सैकड़ों साल पीछे चला गया है। हम चाहें तो हॉट गन से पाकिस्तान को तहस नहस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। हॉट गन, आपका मतलब है प्रोफेसर भानु प्रताप ने जो ईजाद की है उसे हॉट गन का नाम दिया गया है, शागल ने चौंकते हुए कहा। हाँ, ये नाम प्रोफेसर भानु प्रताप ने दिया है और मैंने उनकी ईजाद उनके इस्तेदाद पर उसी नाम से मंसूब कर दी है, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। क्या ये हॉट गन तैयार हो चुकी है या अभी इसके फार्मूले पर काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। प्रोफेसर भानु प्रताप ने अभी फार्मूला मुकम्मल किया है, बहुत जल्द वो अपनी इस ईजाद को अमली शक्ल में लाने पर काम करना शुरू कर देंगे। इब्तदाई तौर पर उन्होंने एक छोटी सी गन बनाई है जिसके उन्होंने कई कामयाब तजुर्बे भी किए हैं। अब वो इस गन को कौमी मफाद के लिए एक बड़ी गन की शक्ल में लाना चाहते हैं, जिसे तैयार करने के लिए उन्हें ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। उनकी ये ईजाद चूंकि इंतहाई सीक्रेट रखी गई है, इसलिए आपको भी इस हॉट गन के बारे में लाइन रखा गया था, और इसकी वजह प्रोफेसर भानु प्रताप की जाती लेबोरेटरी थी। वो चूंकि जाती तौर पर हॉट गन तैयार कर रहे थे, इसलिए उन्हें आला सतही मराहत तो हासिल थी, लेकिन वो वक्त और कामयाबी से पहले अपनी ईजाद के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। अब उनकी दिन रात की अनथक मेहनत जब रंग ले आई है तो उन्होंने इस ईजाद के बारे में मुझे तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया है और मुझसे जाती तौर पर सिफारिश की है कि मैं आला सतह का इजलास तलब करके उनकी ईजाद के बारे में उन्हें ब्रीफिंग की इजाजत दूं और फिर काबीना की मुश्तरका मंजूरी के बाद उन्हें असलहा साज फैक्ट्री में जाने की इजाजत दूं ताकि वो अपने इस फार्मूले को अमली जामा पहना सकें, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। प्रोफेसर भानु प्रताप अब कहाँ है, शागल ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। फिलहाल तो वो अपनी जाती रिहायशगाह में है जिसके नीचे उनकी पर्सनल लेबोरेटरी बनी हुई है, लेकिन चूंकि वो एक बहुत बड़ी और यूनिक ईजाद के मौजूद हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी अहम और खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां उनकी सिक्योरिटी का फूल प्रूफ इंतजाम किया जाएगा ताकि गैर मुल्की एजेंट और खासतौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनसे फार्मूला हासिल करने की कोशिश ना कर सकें, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। अब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। फिलहाल तो इनकी हिफाजत मिलिट्री इंटेलिजेंस कर रही है, लेकिन मैं और खासतौर पर प्रोफेसर भानु प्रताप उनकी हिफाजती इंतजाम से मुतमईन नहीं। वो मुझसे अपनी हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम करने का कह रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर आपके साथ मिस्टर शागल को यहाँ बुलाया है ताकि आपसे डिस्कस करने के बाद मैं प्रोफेसर भानु प्रताप और उनकी ईजाद की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हें सौंप सकूं, प्रेसिडेंट साहब ने कहा तो शागल का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। प्रेसिडेंट की बातें सुनते हुए उसे पहले ही इस बात का अंदाजा होना शुरू हो गया था कि उसे प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ किस लिए बुलाया गया है। ओह यस सर, ये आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। प्रोफेसर भानु प्रताप हमारे ही नहीं बल्कि पूरे काफ्रिस्तान के हीरो हैं और ऐसे हीरोज की हिफाजत के लिए इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम करने चाहिए। उनके गिर्द ऐसा मजबूत हिफाजती जाल होना चाहिए कि उनके करीब एक मामूली मच्छर भी फटक न सके। काफ्रिस्तानी सीक्रेट सर्विस इस वक्त काफ्रिस्तान की तमाम एजेंसियों से इंतहाई फाल और मजबूत सर्विस है जो न सिर्फ अपने मिशन में कामयाबी बल्कि अहम मकामात की हिफाजत करने का भी वसी तजुर्बा रखती है। अगर आप वाकई प्रोफेसर भानु प्रताप को हमारी हिफाजती तहवील में दे दें तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि शर पसंद अनासिर और गैर मुल्की एजेंट तो क्या उनके पास एक मामूली सा मच्छर भी नहीं पहुंच सकेगा, शागल ने फौरन तेज तेज बोलते हुए कहा। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने किसी और के बजाय आपको यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोफेसर भानु प्रताप की हिफाजत की तमाम तल जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें और उन्हें अपनी निगरानी में किसी सीक्रेट और महफूज जगह शिफ्ट कर दें कि जब तक उन्हें किसी असलहा साज फैक्ट्री में हॉट गन पर काम करने की इजाजत नहीं मिल जाती, वो आपकी मखसूस जगह पर इत्मीनान से अपनी जिंदगी बसर करें। मुझे आपकी सलाहियतों पर बेहद भरोसा है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि प्रोफेसर भानु प्रताप आपकी हिफाजत में मुतमईन रहेंगे और इन पर किसी भी किस्म की कोई आंच नहीं आएगी। अहम तरीन बात यह है कि उसके लिए प्रोफेसर साहब ने खुद भी मुझसे यही दरख्वास्त की थी कि अगर उन्हें किसी के हिफाजती इंतजाम पर एतमाद है तो वो काफ्रिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर शागल पर है, किसी और पर नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। तो शागल का चेहरा फिर से मुसर्रत से खिलता चला गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सदर मुमलिकत और प्रोफेसर भानु प्रताप के इस यकीन और भरोसे पर उठकर उन्हें फर्शी सलाम करना शुरू कर देता। इस एतमाद और भरोसे के लिए मैं आपका और प्रोफेसर साहब का दिल से मशकूर हूँ जनाब सदर। मैं आपके और प्रोफेसर साहब के इस एतमाद और भरोसे को किसी सूरत भी टूटने नहीं दूंगा। प्रोफेसर साहब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मैं जान लड़ा दूंगा और मैं उन्हें एक ऐसे हिफाजती मकाम पर ले जाऊंगा जहां उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद होगी और वो जिंदगी भर वहां चैन और सुकून से रह सकेंगे। मेरे होते हुए उन तक मच्छर तो क्या किसी मच्छर का साया भी नहीं पहुंच सकेगा, शागल ने मुसर्रत से रुके बगैर मुसलसल बोलते हुए कहा। गुड शो, मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर शागल। मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को सब कुछ समझा दिया है, आप भी उनसे मिल लें, वो आपको प्रोफेसर भानु प्रताप के पास ले जाएंगे। आप प्रोफेसर साहब से मिलकर उन्हें अपना सेटअप बता दें और इनसे डिस्कस कर लें ताकि आप उनकी और वो आपकी हिदायत के मुताबिक काम कर सकें, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। तो शागल ने इस बात में सर हिला दिया। क्या मैं अभी चला जाऊं प्रोफेसर साहब से मिलने, शागल ने पूछा। हाँ, ये इंतहाई अहम और हसास मामला है, ये जितनी जल्द मुमकिन हो मुकम्मल हो जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इस मामले में ताखीर और कोताही हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। आप जाकर मिलिट्री सेक्रेटरी से मिल लें और फिर उनके साथ अभी और इसी वक्त प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए रवाना हो जाएं। तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दूसरे उमूर पर डिस्कस कर लूंगा, सदर मुमलिकत ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर, ठीक है सर, मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। प्रोफेसर साहब से मिलकर मैं उनकी हिफाजत के तमाम उमूर तय कर लूंगा और तमाम सेटअप उनकी मर्जी और उनकी मंशा के मुताबिक ही बनाऊंगा ताकि उन्हें कोई जहनी कोफ्त न हो और वो अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए मेरे इकदामात से मुतमईन रह सके, शागल ने उठते हुए कहा। तो सदर मुमलिकत ने इस बात पर सर हिला दिया। शागल ने सदर मुमलिकत और प्राइम मिनिस्टर को मखसूस अंदाज में सैल्यूट किया और स्पेशल रूम से बाहर निकलता चला गया। ये क्या सर, आपने इस मामले में मुझसे तो कोई सलाह मशवरा नहीं किया और डायरेक्ट चीफ शागल को प्रोफेसर भानु प्रताप की हिफाजत के लिए हिदायत भी दे दी है। मेरी नजर में शागल जज्बाती और इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान है। गैर मुल्की एजेंटों, खासतौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मामले में उसकी कारकर्दगी अब तक सिफर ही रही है। प्रोफेसर भानु प्रताप की हॉटगन की भुनक अगर इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मिल गई और वो यहाँ आ गए तो फिर शागल हमेशा की तरह उनके पीछे भागता ही रह जाएगा और पाकिस्तानी एजेंट अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। शागल ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मामले में हमेशा मात खाई है, इसलिए मेरी नजर में इसे इतना बड़ा टास्क देना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। हॉटगन दुनिया में अब तक की ईजाद की जाने वाली तमाम ईजादात से सबसे बड़ी और इंतहाई ताकतवर है। अगर इसका फार्मूला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ लग गया तो पाकिस्तान की जगह उल्टा हम उनके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। शागल के कमरे से निकलते ही प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट साहब की जानिब देखते हुए इंतहाई एहतजाजी लहजे में कहा, जैसे उन्हें प्रेसिडेंट साहब को शागल के हक में किया हुआ एक तरफा फैसला बिल्कुल पसंद न आया हो। क्या आप बता सकते हैं कि काफ्रिस्तान की ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके मुकाबले पर इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आई हो और वो उनका मुकाबला कर सकी हो या उन्हें उनके मिशन में कामयाब होने से रोक सकी हो, प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर की जानिब देखते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में कहा और उनकी बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे जुजबुज से होकर रह गए। ये दुरुस्त था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को आगे बढ़ने से रोकने और उन्हें काफ्रिस्तान में किसी भी मिशन में कामयाब होने से रोकने के लिए एक से बढ़कर एक एजेंसियां कायम की गई थी और इन एजेंसियों के चीफ और एजेंट इंतहाई तरबियत याफ्ता होने के बावजूद इमरान और उसके साथियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। इमरान और उसके साथी आज तक काफ्रिस्तान में जिस भी मिशन पर आए थे कामयाब होकर ही लौटे थे। ये दुरुस्त है सर कि आज तक हमारी कोई भी एजेंसी इमरान और उसके साथियों का रास्ता नहीं रोक सकी है और वो हमेशा यहाँ से कामयाब होकर ही लौटे हैं, लेकिन उनमें उन्हें मिलने वाली कामयाबियां ज्यादातर शागल की ही मरहूने मिन्नत होती हैं। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जब भी किसी मिशन पर काफ्रिस्तान आती है और हम इन्हें रोकने के लिए जिस एजेंसी को आगे करते हैं, शागल इमरान और उसके साथियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर क्रेडिट हासिल करने के लिए नादानिस्तगी ही में सही, लेकिन इमरान और उसके साथियों को ऐसे मौके फराहम करने का बायस बन जाता है कि इमरान और उसके साथी दूसरी एजेंसियों को कच्चा देकर यहाँ से आसानी से निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिनमें बजा तौर पर शागल ने मदाखलत की थी और इमरान उसके साथ ही एन उस वक्त दूसरी एजेंसियों से अपनी जानें बचाकर निकल जाने में कामयाब हो गए थे, जब दूसरी एजेंसियों के सरबराह उन्हें मौत के दहाने तक ले आने में कामयाब हो जाते थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि इमरान और उसके साथियों की नफ्सियात को जितना शागल समझता है उतना शायद ही किसी और एजेंसी का सरबराह समझता हो। दूसरी एजेंसियों के मुकाबले में शागल इमरान और उसके साथियों की कमजोरियों के बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी और एजेंसी के बजाय शागल को ही इस मामले में आगे रखा जाना चाहिए, ताकि अगर इमरान और उसके साथी काफ्रिस्तान आए तो वो अपनी सलाहियतों और अपने जहानत से उन्हें प्रोफेसर भानु प्रताप तक पहुँचने का कोई मौका ही ना दे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इमरान और उसके साथी इस बार काफ्रिस्तान आए तो शागल उनके सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा, जिसे तोड़ना इस बार इमरान और उसके साथियों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और अगर इमरान और उसके साथियों ने शागल जैसी मजबूत और ताकतवर दीवार से टकराने की गलती की तो वो खुद ही पाश पाश होकर रह जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब ने शागल के हक में बात करते हुए कहा। आप शागल पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं जनाब सदर, प्राइम मिनिस्टर ने होंठ भींचते हुए नपे तुले लहजे में कहा। उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें सदर मुमलिकत की इस तरह शागल की तारीफ करना बिल्कुल पसंद न आया हो। हाँ, मैंने शागल को बहुत करीब से देखा है, वो गुस्सीला और सख्त तबीयत का जरूर है, लेकिन इस पर जहानत और किसी भी हदफ को पाने के लिए तमाम तर औसाफ मौजूद हैं। वो बहादुर होने के साथ साथ इंतहाई मेहनती है और एक बार वो किसी के पीछे लग जाए तो वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक वो मुजरिम की शहरत तक नहीं पहुंच जाता। ये दुरुस्त है कि शागल इमरान और उसके साथियों के मामले में नाकामियों से दो चार होता रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इमरान की गर्दन शागल के हाथों में होगी और इमरान शागल के हाथों में मुर्दा केचवे की तरह लटक रहा होगा, प्रेसिडेंट ने इसी अंदाज में कहा। आप शागल पर इस हद तक भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। मेरे ख्याल के मुताबिक आपने प्रोफेसर भानु प्रताप की हिफाजत की जिम्मेदारी शागल को सौंप कर दुरुस्त फैसला नहीं किया है, लेकिन चूंकि ये आपका फैसला है इसलिए मैं इस फैसले पर एतराज नहीं करूंगा, लेकिन इस मामले में आपसे मुत्तफिक भी नहीं हूँ। अगर इमरान और उसके साथी काफ्रिस्तान आए और शागल उन्हें प्रोफेसर भानु प्रताप तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा और वो उनकी ईजाद करदा हॉट गन तक पहुंच गए और अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गए तो शागल की इस नाकामी में मेरा कोई हाथ नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ठीक है, आपसे मैंने ये मामला डिस्कस करना था सो कर लिया है। अगर आप खुद को इस मामले से अलग रखना चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। आइंदा इस मामले में आपसे ना कोई डिस्कस की जाएगी और ना ही आप पर कोई जिम्मेदारी डाली जाएगी। अब मीटिंग बर्खास्त की जाती है, प्रेसिडेंट साहब ने इस बार कदर नागवार लहजे में कहा। मैं जानता हूँ जनाब कि आपको मेरी बातें नागवार गुजर रही हैं, लेकिन मैं, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने उन्हें हाथ उठाकर बोलने से रोक दिया। नहीं, इस मामले पर अब कोई बात नहीं होगी, प्रेसिडेंट साहब ने कदर तल्ख लहजे में कहा, तो प्राइम मिनिस्टर ने बेख्तियार जबड़े खींच लिए। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर प्रेसिडेंट साहब से हाथ मिलाया और फिर वो एक तवील सांस लेकर मुड़े और तेज तेज चलते हुए स्पेशल रूम से निकलते चले गए। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रूम से बाहर गए, प्रेसिडेंट साहब भी उठकर खड़े हो गए और फिर वो भी अपने मखसूस बावकाराना अंदाज में चलते हुए स्पेशल रूम के उस दरवाजे से बाहर निकलते चले गए जिस दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुए थे। इमरान सोफे में धंसा अपने सामने पड़ी हुई मेज पर मौजूद फोन की तरफ देख रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी के फोन का इंतजार हो। फोन सेट को देखने के साथ साथ वो दीवार गिर क्लॉक को की जानिब भी देख रहा था। उसकी बेचैनी का ये आलम था कि वो बार बार फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाता और रिसीवर में फोन की टोन सुनते ही सर हिलाकर रिसीवर क्रेडल पर रख देता। गर्मियों के दिन थे इसलिए उसने एक बनियान और शलवार पहन रखी थी। मुझे जागे हुए 3 घंटे 6 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं, मगर मजाल है कि अभी तक इस फोन की एक भी घंटी बची हो। टोन भी क्लियर है, इसके बावजूद भी फोन नहीं बज रहा। आखिर इसे हुआ क्या है? जब ये बजने पर आता है तो बजता ही चला जाता है, फिर ना ये दिन देखता है और ना रात, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ, उसके हाथ में चाय का एक कप था। सुलेमान ने बड़ी संजीदगी से चाय का कप इमरान के सामने टेबल पर रख दिया। ये आप पिछले 4 घंटों से फोन को क्यों देख रहे हैं? क्या किसी की कॉल का इंतजार है आपको? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। किसकी? सुलेमान ने पूछा। किसी की भी हो, बस मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कॉल करे। मैंने पिछले कई घंटों से इस फोन सेट पर ना बेल बजने की आवाज सुनी है और ना इससे किसी की आवाज सुनी है। मेरा दिल चाह रहा है कि इस फोन की घंटी बजे और बजती ही चली जाए। जब घंटी बजाने वाला थक जाए तब मैं फोन का रिसीवर उठाऊं और कान से लगाकर दूसरी तरफ से बोलने वाले की बातें सुनता ही चला जाऊं, इमरान ने कहा। और इमरान की बेतुकी बातें सुनकर सुलेमान हैरान रह गया। ये क्या हिमाकत है, आप महज फोन की घंटी सुनने के लिए इतनी देर से इसके सामने बैठे हुए हैं? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, बैठा हुआ हूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ और किचन में जाकर अपनी दाल बघारो। मैं तो इस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक कि किसी का फोन मुझे नहीं आ जाता, इमरान ने हवा में हाथ लहरा कर कहा। अगर शाम तक किसी का फोन ना आया तो क्या तब तक आप इसी तरह फोन के सामने बैठे रहेंगे? सुलेमान ने इसी अंदाज में कहा। हाँ, बैठा रहूंगा। शाम तक तो क्या मैं रात भर बैठा रहूंगा और उस वक्त तक सोने का तसव्वुर भी नहीं करूंगा जब तक मेरे कानों में फोन की घंटी बजने की मुतरन्नुम आवाज सुनाई नहीं दे जाती। चाहे इसके लिए मुझे कई दिन और कई रातें ही क्यों न जागनी पड़े, इमरान ने कहा। उल्टी खोपड़ी के इंसान हैं आप, कुछ न सूझे तो आप ऐसी ही हिमाकतें करना शुरू कर देते हैं, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो सिर्फ उल्टी खोपड़ी का हूँ, तुम तो मुझे पूरे ही उल्टे दिखाई दे रहे हो, नामिलेस, इमरान ने कहा। नामिलेस? ये नामिलेस क्या है? सुलेमान ने हैरत से कहा। तुम उल्टे हो तो मैंने तुम्हारा नाम भी उल्टा कर दिया है। तुम्हारा नाम नून पर खत्म होता है। अगर तुम अपने नाम सुलेमान को नून से नाम के पहले हरफ सीन तक लाओ तो तुम्हारा उल्टा हुआ नाम नामिलेस ही बनता है। यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो, इमरान ने कहा और सुलेमान एक तवील सांस लेकर रह गया। तब तो मुझे आपको नारमे कहना चाहिए, सुलेमान ने कहा। उल्टे तुम हो, मैं नहीं, मेरा नाम इमरान ही ठीक है, तुम अपनी इसलाह करो, इमरान ने कहा। उल्टा हुआ आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, जो उल्टा सोचता है वो खुद ही उल्टा हुआ करता है, इसलिए आपका नाम भी ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे आपसे उल्टी बातें करनी चाहिए ताकि आपके उल्टे हुए दिमाग में बातें सीधी होकर फिट हो सके, सुलेमान ने कहा। वो कैसे? इमरान ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। नीम पायक यल याच अयाल नू यदलज यस यप नील हनरो वीच आइच यडहनट वो याज यग, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान की आंखें अपने हलकूम में सर्च लाइट्स की तरह घूम कर रह गईं। मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, जल्दी से पी लें वरना ठंडी हो जाएगी, यही कहा है ना तुमने? शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, इमरान ने खुश होते हुए कहा। जी हाँ, देखा है ना आपका दिमाग उल्टा है, उल्टी बात कैसे आसानी से समझ आ गई आपको, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार अपना सर पे हाथ फेर कर रह गया। उसी लम्हे कॉल बेल बज उठी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। बजी घंटी, इमरान ने फोन सेट की जानिब देखते हुए इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। जब आदमी की खोपड़ी उल्टी होती हो तो फिर उसे सीधी बात की तवक्का ही नहीं की जा सकती। ये कॉल बेल बजने की आवाज है, टेलीफोन की घंटी आपके उल्टे दिमाग में बजी है, सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा और वो मुड़कर कमरे से निकला और तेज तेज चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर दूसरे लम्हे राहदारी जैसे भागते हुए कदमों की आवाज उसे गूंज उठी। उसी लम्हे सुलेमान भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बड़े बड़े साहब आए हैं, सुलेमान ने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा और बड़े साहब का सुनकर इमरान भी बेख्तियार उछल पड़ा। अरे बाप रे, ये बड़े साहब सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। वो फौरन उछला और उल्टे कलाबाजी लगाते हुए सोफे के पीछे आ गया। उसने सोफे के पीछे से सर निकालकर दरवाजे पर खड़े सुलेमान की जानिब देखा। उनसे कहो कि मैं फ्लैट पर नहीं हूँ, मैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए किसी तपते हुए सहरा के बर्फानी तोदों का मजा लेने के लिए गया हुआ हूँ, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि वो सर नीचे कर लेता, उसी लम्हे सुलेमान के पीछे से सर सुल्तान निकल कर सामने आ गए। सर सुल्तान को देखते ही इमरान ने फौरन सर नीचे कर लिया, लेकिन सर सुल्तान उसे देख चुके थे। ये बड़े साहब तो नहीं, अलबत्ता बड़े जरूर हैं, खट्टे दही बड़े, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। जिस तरह से सुलेमान ने उसे बड़े साहब के आने के बारे में बताया था, उससे इमरान बड़े साहब का मतलब सर अब्दुल रहमान समझा था। इमरान, अचानक कमरे में सर सुल्तान की आवाज गूंजी और इमरान ये आवाज सुनते ही न सिर्फ बौखला कर खड़ा हो गया था बल्कि उलट कर सोफे पर आ गिरा था। उसने उठने की कोशिश की तो इस बार वो सोफे से उछल कर फर्श पर आ गिरा था। ओह दही बड़े जनाब, मैं वो, अरे, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। दूसरे लम्हे उसकी नजरें सर सुल्तान के साथ खड़े एक गैर मुल्की पर जा पड़ी जो बड़ी हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर इमरान ने अपना बेख्तियार जिस्म समेट लिया, जैसे शलवार और बनियान में उसे गैर मुल्की के सामने शर्मा रही हो। ये क्या हिमाकत है, जाओ जाकर जल्दी से ढंग का लिबास पहन कर आओ, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। जी जी, इमरान ने उसी अंदाज में कहा और तेजी से दाएं तरफ दौड़ा। फिर वो बाएं तरफ आया और फिर पलट कर दीवार की जानिब देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो जल्द से जल्द इस कमरे से निकल जाना चाहता हो, मगर उसे कमरे से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो। वो अहमकाना अंदाज में इधर उधर भाग रहा था। इमरान, सर सुल्तान ने चीख कर कहा तो इमरान ने बौखला कर उनकी तरफ देखा और फिर वो बगैर रुके भागता हुआ सर सुल्तान और गैर मुल्की के दरमियान से निकलता चला गया। और दूसरे लम्हे उसने एक लंबी छलांग लगाई और दरवाजे में गायब हो गया। ये कौन है, गैर मुल्की ने सर सुल्तान की जानिब देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। ये वही इमरान है जिससे मैं आपको मिलाने के लिए लाया हूँ, सर सुल्तान ने होंठ भींच कर जवाब देते हुए कहा। इमरान को मुख्तसर से लिबास में देखकर उनके चेहरे पर भी नागवारी के तासुरात उभर आए थे। ये है इमरान, गैर मुल्की ने चौंक कर कहा। जी हाँ, आप फिक्र ना करें सर वाइली, ये ही वही इमरान है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से बताया था, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो सिटिंग रूम में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गए। उनके कहने पर सर वाइली भी बादल नख्वास्ता एक सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बदस्तूर नागवारी के तासुरात थे। थोड़ी देर बाद जब इमरान वापस आया तो उसने इंतहाई शाहाना लिबास पहन रखा था। उसके जिस्म पर नकली तारों जैसे मुनअकश शेरवानी थी, गले में मुख्तलिफ रंगों के कीमती मोतियों की मालाएं थी, पैरों में तिल्ले वाले शाही जूती और उसके सर पर बाकायदा किसी रियासत का सुनहरी ताज रखा हुआ था। उसके पहलू में एक नियाम भी थी जिससे तलवार का सुनहरी दस्ता निकला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। प्रिंस ऑफ ढंप मौजिज मेहमानों को अपने ढंप महल में आने पर खुशामदीद कहता है, इमरान ने इन दोनों के सामने बाकायदा झुक कर कोर्निश बजा लाते हुए कहा। इमरान, ये सर वाइली है, ये शोग्रान से आए हैं और इनका ताल्लुक शोग्रान की एक सीक्रेट एजेंसी ब्लैक क्राउन से है जिनके ये चीफ हैं। सर सुल्तान ने इमरान की हिमाकत देकर फौरन गैर मुल्की का तारुफ कराते हुए कहा। शोग्रान, खूब, बहुत ही खूब, फिर तो ये चाय और कॉफी बगैर शुगर के ही पीते होंगे और कुछ नहीं तो इसी बहाने से हमारे महल की शुगर की तो बचत हो ही जाएगी। ये फीकी चाय या कॉफी में अपने मुल्क का नाम लेकर फूंक मारेंगे तो इन्हें शुगर की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि इनके खून में शुगर ही शुगर भरी हुई होगी। अगर ये इजाजत दें तो मैं उनकी एक उंगली काट कर अपने पास महफूज कर लूँ। हमारे यहाँ शुगर की ही प्रॉब्लम रहती है। जिस रोज हमें शुगर नहीं मिलेगी हम इनकी उंगली चाय या कॉफी में डुबो कर शुगर की मिठास भर दिया करेंगे, इमरान ने कहा। और उसने नियाम से तलवार निकाल कर हाथ में ले ली और यूं सरवाइली की जानिब बढ़ा जैसे वो एक ही झटके से सरवाइली की एक उंगली तो क्या पूरा हाथ ही उड़ा देना चाहता हो। इमरान के इन फिक्रों से सरवाइली का चेहरा सुर्ख हो गया और सर सुल्तान के चेहरे पर भी खजालत के तासुरात नुमाया हो गए थे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई है जनाब, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा और हाथ मिलाने के बजाय सरवाइली की जानिब तलवार बढ़ा दी। इमरान, ये क्या कर रहे हो, ये हमारे मौजूद मेहमान हैं, सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओह सॉरी, मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई जनाब, बल्कि आपको देखकर मुझे बहुत दुख और अफसोस हो रहा है। आप इतने दुबले पतले हैं कि फूंक मारो तो हवा में उड़ जाएं। आप जैसे इंसान को किसी एजेंसी का चीफ नहीं बल्कि शोगरान का हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए था, ताकि आपकी सेहत देखकर आवाम को इस बात का एहसास होता कि आप किस कदर कलील खुराक इस्तेमाल करते हैं, ताकि गरीब आवाम के लिए कुछ बचा सकें। और इमरान की जबान एक बार फिर चलने पर आई तो रुके बगैर चलती ही चली गई। इसकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि सरवाइली गुस्सीले अंदाज में एक झटके से उठकर खड़े हो गए। सर सुल्तान, मैं ऐसी बातों के सुनने का आदी नहीं हूँ, आप मुझे इजाजत दें, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, सरवाइली ने इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। ओह नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं सरवाइली, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इमरान ऐसा ही है, आप इसकी बातों पर ना जाएं। सर सुल्तान ने सरवाइली को उठते देख कर खुद भी उठकर उन्हें समझाते हुए कहा। जी हाँ जी हाँ, आप मेरी बातों पर कहीं ना जाएं, अगर आपको कहीं जाना हो तो किसी टैक्सी कार या फिर मोटर बाइक पर जाएं, ताकि आप आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, इमरान ने कहा। सुनो इमरान, अब संजीदा हो जाओ, अगर अब तुम संजीदा ना हुए तो मैं वाकई सरवाइली को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं इनसे हाल अहवाल पूछे बगैर ही इन्हें और आपको चाय पिलवा दूं? इमरान भला आसानी से कहां बाज आने वाला था। उनकी बात सुनकर सर सुल्तान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उनके कहने पर सरवाइली एक बार फिर सोफे पर बैठ गया था। इमरान प्लीज, सर सुल्तान ने जबड़े भींचते हुए बेबसी के आलम में कहा। ओह इस कदर आजजी, इस कदर इनकसारी, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, अब मेरे बजट में हो या ना हो, मुझे आपके लिए और आपके मुअज्जिज मेहमान के लिए चाय तो बनवानी ही पड़ेगी, चाहे इसके लिए मुझे शहर का कोई बैंक ही क्यों ना लूटना पड़े। सुलेमान भाई, सुलेमान, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा और फिर ऊंची आवाज में सुलेमान को आवाजें देना शुरू हो गया। अभी उसने सुलेमान को चंद आवाजें ही दी थी कि उसी लम्हे सुलेमान एक ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया। ट्रॉली में चाय के साथ दूसरे लवाजमात देखकर इमरान यूं उछल पड़ा जैसे उसने ऐसी चीजें जिंदगी में पहली बार देखी हो। अरे बाप रे, इतना कुछ, ये सब कुछ कहाँ से आ गया? मैंने सुबह तुमसे नाश्ता मांगा था तो तुमने मेरे सामने चाय का एक कप लाकर रख दिया था कि इसके सिवा किचन में कुछ नहीं है, और अब ये सब कुछ कहाँ से आ गया? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए, कहा था कि आपके लिए किचन में कुछ नहीं, ये नहीं कहा था कि मेरे लिए और फ्लैट में आने वाले मौजूद मेहमानों के लिए भी कुछ नहीं है, सुलेमान ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। और सर सुल्तान के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई जबकि इमरान दीदे घुमाकर रह गया। सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ सर सुल्तान और सरवाइली के सामने ले आया। बंदा खुदा, मैं तो इनके सामने मुफलिसी और तंगदस्ती का रोना रो रहा था ताकि मैं अपने लिए नहीं तो तुम्हारे लिए सर सुल्तान से कुछ ऐंठ सकूं, लेकिन तुमने ये सब लाकर मेरा सारा काम ही चौपट करके रख दिया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर आपको मेहमान नवाजी नहीं आती तो कम अज कम आप खामोश तो रह सकते हैं, मैं ये सब आपके लिए नहीं मौजूद मेहमानों के लिए लाया हूँ, सुलेमान ने इमरान को डांटने वाले अंदाज में कहा। और उसकी डांट सुनकर इमरान यूं सहम गया जैसे बच्चा बाप की डांट सुनकर सहम जाता है। सर सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। सुलेमान ने बड़े एहतमाम से सर सुल्तान और सरवाइली के लिए चाय बनाई और फिर उन्हें इंतहाई सलीके से सर्व करने लगा। उसने स्नैक्स और दूसरे लवाजमात भी बड़े अदब से सर सुल्तान और सरवाइली को पेश करने शुरू कर दिए। इमरान की बातों पर ना जाएं सरवाइली, जब आप इसकी फितरत से वाकिफ हो जाएंगे तो फिर आप खुद भी इसकी बातों से महसूस होना शुरू कर देंगे, सर सुल्तान ने सरवाइली से कहा। तो सरवाइली ने इस बात में सर हिला दिया, अलबत्ता उनके चेहरे पर बदस्तूर कबीदगी के तासुरात नुमाया थे। सर सुलेमान, अगर इजाजत दें तो मैं भी इनके साथ नाश्ता कर लूं, इमरान ने सहमी हुई नजरों से सुलेमान की जानिब देखते हुए कहा। उसने जानबूझकर सुलेमान को सर कहा था। ठीक है आ जाएं, सुलेमान ने बड़े शाहाना लहजे में कहा। तो इमरान ने फौरन बत्ती से निकाली और तेजी से कुर्सी घसीट कर ट्रॉली के सामने आ गया। वो ट्रॉली में रखी हुई चीजों पर नदीदों की तरह टूट पड़ा जैसे उसने वाकई कई रोज से कुछ खाया ही ना हो। उसे इस तरह खाते देख कर सर सुल्तान का चेहरा सुर्ख होना शुरू हो गया था। सरवाइली के चेहरे पर भी मौजूद कबीरजी के तासुरात मजीद बढ़ गए थे। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है जो तूने कंगले बावर्ची के हाथों मौजूद मेहमानों के जरिए ही सही मुझे भी इतना कुछ खाने के लिए दे दिया है, वरना मैं तो ऐसी चीजें देखने को भी तरस गया था, इमरान ने सैर होकर खाने के बाद कहा। सर सुल्तान और सरवाइली भी नाश्ता खत्म कर चुके थे जब इन तीनों ने चाय पी ली तो सुलेमान बर्तन समेटने में मसरूफ हो गया। और फिर वो बर्तन समेट कर ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। जी जनाब, अब आप मुझे इत्मीनान से अपनी आमद के बारे में बता सकते हैं। मैं हमानोश और हमतन तोश के बाद अब हमतन गोश भी हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान बेटे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इनका नाम सरवाइली है, ये मेरे दोस्त हैं। ये मुझे कुछ बताने के लिए खसूसी तौर पर शोग्रान से यहाँ आए हैं। इन्होंने मुझे जो कुछ बताया है उसे सुनकर मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि इन सब बातों का तुम्हें भी इल्म हो सके, सर सुल्तान ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। क्या बताया है इन्होंने, इमरान ने संजीदगी से कहा और उसके चेहरे पर अचानक छाने वाली संजीदगी देखकर सरवाइली हैरान रह गए। कहां इमरान, उनके सामने एक अहमक और लाओबाली सा इंसान दिखाई दे रहा था और अब उसके चेहरे पर ठोस चट्टानों की सी सख्ती और संजीदगी दिखाई दे रही थी। आप बताएंगे या मैं बताऊं, सर सुल्तान ने सरवाइली की जानिब देखते हुए पूछा। मैं बताता हूँ, सरवाइली ने कहा तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। सरवाइली ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकालकर इमरान की जानिब बढ़ा दिया। ये तस्वीरें देखें, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ, सरवाइली ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसने लिफाफा खोला, लिफाफे में तस्वीरों का पलंदा था। इमरान ने पहली तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर संजीदगी कदरे गहरी हो गई। इस तस्वीर में एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी जिसमें एक बड़ा सा सुराख बना हुआ था। ये सुराख पहाड़ी के दरमियानी हिस्से में था। पहाड़ी सुराख में से एक नीले रंग की रोशनी सी दाखिल होकर दूसरी तरफ गुजरती दिखाई दे रही थी। गो कि ये रोशनी इंतहाई मध्यम थी लेकिन तस्वीर से साफ लग रहा था जैसे नीली रोशनी पहाड़ी के एक हिस्से से टकराई हो और पहाड़ी को जलाकर उसमें सुराख बनाती हुई दूसरी तरफ निकल गई हो। इमरान ने दूसरी तस्वीर देखी। इस तस्वीर में भी इसी पहाड़ी का मंजर था जिसे दूसरे जाविये से खींचा गया था। इमरान तस्वीरें देखता रहा। इसी तस्वीरों में मुख्तलिफ पहाड़ियां दिखाई दे रही थी जिनमें छोटे बड़े ऐसे ही सुराख बने हुए थे जिनमें से नीली रोशनी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। इसके अलावा चंद तस्वीरों में ठोस चट्टानें दिखाई दे रही थी जो यूं जली हुई थी जैसे उन्हें बाकायदा हजारों फॉरेनहाइट से जलाने की कोशिश की गई हो। चंद तस्वीरें एक बड़ी झील की थी। चंद तस्वीरों में झील पानी से भरी हुई दिखाई दे रही थी लेकिन अगली तस्वीरों में उस झील का पानी भाप बनकर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पानी में बाकायदा बुलबुले से बने हुए थे जैसे झील के नीचे लावा मौजूद हो जो झील का पानी उबाल रहा हो। इससे अगली तस्वीरों में इस झील का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था। इस झील पर भी वही हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी जो इमरान ने पहाड़ियों में बने हुए सुराखों से गुजरते देखी थी। ये सब क्या है, ये पहाड़ियों के सुराख, ये झील का भाप बनकर उड़ना और ये नीली रोशनी, इमरान ने हैरान होते हुए कहा। ये तस्वीरें हमने अपने स्पाइस सैटेलाइट से हासिल की हैं। इन तस्वीरों से हमें एक अहम तरीन राज का इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ के बारे में जब हमने अपने स्पेशल फोर्सेज से तहकीकात कराई तो हमें इस इंकशाफ की मजीद मालूमात हुई। स्पेशल फोर्स जिसका ताल्लुक मेरी एजेंसी ब्लैक क्राउन से है की रिपोर्ट जब मुझे पेश की गई तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं गैर सरकारी तौर पर यहाँ आऊँ और सर सुल्तान को तमाम तर तफसीरात से आगाह कर दूँ क्योंकि स्पेशल फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस इंकशाफ का ताल्लुक पाकिस्तान से था और अगर मैं यहाँ सरकारी तौर पर आता तो इन पहाड़ियों में सुराख बनाने वालों और झील का पानी खुश करने वालों को पता चल जाता कि मुझे उनके राज का इल्म हो चुका है। मैं इस राज के बारे में खत लिख कर या फोन करके भी सर सुल्तान को आगाह नहीं कर सकता था इसलिए मैं रात को खुफिया तौर पर यहाँ पहुंच गया था और सुबह होते ही मैं सर सुल्तान के ऑफिस में पहुंच गया। सर सुल्तान को तो मैंने राज से आगाह कर दिया है लेकिन ये चाहते हैं कि इस राज में तुम्हें भी शरीक किया जाए। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था चुनाचा हम यहाँ आ गए, सरवाइली ने बड़ी तफसील से तमहीद बांधते हुए कहा। वो क्या राज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्गी के किसी अंडे से हाथी का बच्चा निकल आया हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे सरवाइली की इस तमहीद पर शरीर गुस्सा आ रहा था। प्लीज इमरान, अब पटरी से न उतरना, सर सुल्तान ने इमरान की मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा क्योंकि उन्होंने इमरान के रिमार्क पर सरवाइली का चेहरा एक बार फिर सुर्ख होते हुए देख लिया था। अगर ये आपका शाही फरमान है तो फिर मैं ट्रैक पर आ जाता हूँ जनाब, इमरान ने संजीदा होकर कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार होंठ भींच कर रह गए। सबसे पहले हमारे स्पाई सैटेलाइट ने इंकशाफ किया कि काफ्रिस्तान के शुमाली साहिल की जानिब एक गैर आबाद जजीरे पर कोई गैर मामूली कार्रवाई की जा रही है। हमने स्पाई सैटेलाइट से खुफिया तौर पर इस जजीरे को सर्च करना शुरू किया तो हमें वहां बेशुमार हेलीकॉप्टर हरकत करते हुए दिखाई दिए। ये सामान बरदार हेलीकॉप्टर थे जिनसे इस जजीरे पर बड़े बड़े क्रेट्स और मशीनें ले जाती दिखाई दी जा रही थी। यह सामान ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि इस जजीरे पर कोई बहुत बड़ी असलहा साज फैक्ट्री बनाने की तैयारी की जा रही हो। वहां चूंकि बेशुमार अफराद मौजूद थे, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे असलहा साज फैक्ट्री इंतहाई उजलत और तेजी से बनाने की तैयारियां की जा रही हो। मैंने अपने फॉरन एजेंटों से राब्ता किया तो मुझे रिपोर्ट्स मिली कि काफ्रिस्तान वाकई इस जजीरे पर एक ऐसी असलहा साज फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रहा है जहां वो खुफिया तौर पर आम और रिवायती हथियार बनाने के बजाय एक मखसूस गन बनाना चाहते हैं जिसे रेस गन कहा जाता है। इस गन का नाम हॉट गन रखा गया है और ये काफ्रिस्तान के एक साइंसदान ने जाती तौर पर ईजाद की है। इसी गन से निकलने वाली रेस से बड़े बड़े और ठोस पहाड़ों में भी एक लम्हे में सुराख किए जा सकते हैं। झील समेत दरियाओं का पानी भी एक लम्हे में भाप बनाकर उड़ाया जा सकता है। हॉट गन से निकलने वाली रेस हॉल रेस है जिसे किसी आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमारे स्पाई सैटेलाइट ने इस रेस की तस्वीर ले ली है। ये नीली रोशनी इसी तबाहकुन रेस की है। इस रेस से बड़ी फौज और इस फौज के असलहे को एक लम्हे से भी कम वक्त में जलाकर खाकिस्तर किया जा सकता है और मेरी मालूमात के मुताबिक इसकी रेंज 2000 मीटर तक हो सकती है। फॉरेन एजेंटों ने जजीरे में जाकर भी तहकीकात की थी। इनकी दी हुई रिपोर्ट से सारी हकीकत मेरे सामने आ गई है। काफ्रिस्तान इस जजीरे पर अंडरग्राउंड असलहा साज फैक्ट्री तैयार करने में मसरूफ है जहां सिर्फ हॉट गने ही तैयार की जाएंगी और आम रिवायती गनों की जगह जंग में जब इन गनों को इस्तेमाल किया जाएगा तो काफ्रिस्तान अपनी मुखालिफ फौज का एक लम्हे में सफाया कर सकता है। यहां तक कि इन गनों से आसमानों में उड़ते हुए जंगी तैयारों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जब ये सारी रिपोर्ट मुझे मिली तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं पाकिस्तान को काफ्रिस्तान के अजाइम से बाखबर कर दूं। अगर काफ्रिस्तान हॉट गने बनाने में कामयाब हो गया तो ये बात यकीनी है कि काफ्रिस्तान सबसे पहले इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा और इस गन के सामने पाकिस्तान का तमाम दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर रेत की दीवारों की तरह ढह जाएगा और काफ्रिस्तान को पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल हो जाएगी, ऐसी बर्तरी कि वो जब चाहे पाकिस्तान को एक लम्हे में चलाकर राख बना सकता है। और पाकिस्तान चूंकि हमारा दोस्त मुल्क है इसलिए इसकी तबाही हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। यही वजह है कि मैं सब तमाम तर सबूतों के साथ आपके पास आया हूँ, सरवाइली ने कहा और उन्होंने जेब से एक मुड़ी तुड़ी फाइल निकालकर उसे सीधी करते हुए इमरान की जानिब बढ़ा दी। इमरान जो जबड़े भीचे हॉट गन और काफ्रिस्तानी अजाइम के बारे में सुन रहा था ने फाइल उठाई और इसको खोल कर देखने लगा। फाइल में जजीरे का नाम कॉलैंड लिखा हुआ था। फाइल में चंद कागजात और मजीद तस्वीरें भी थी जो ब्लैक क्राउन के एजेंटों ने खुफिया तौर पर हासिल की थी। इस फाइल की रिपोर्ट के मुताबिक काफ्रिस्तान तेजी से जजीरा कॉलैंड पर असलहा साज फैक्ट्री तैयार कर रहा था जहां वो बड़े पैमाने पर हॉट गन तैयार करना चाहता था। एक तस्वीर में उसे एक हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ शागल दिखाई दिया। तो इस जजीरे की हिफाजत की जिम्मेदारी शागल के पास है, इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। जी हाँ, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जजीरे पर होने वाली सारी कार्रवाई और जजीरे की हिफाजत की जिम्मेदारी काफ्रिस्तान सीक्रेट सर्विस के पास है और काफ्रिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल बजाते खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, सरवाइली ने जवाब दिया। इमरान कुछ देर गौर से रिपोर्ट पढ़ता और तस्वीरें देखता रहा और फिर उसने एक तवील सांस लेकर फाइल में इस पर रख दी। इमरान बेटे, अब जजीरा कॉलैंड के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? मैं इस मामले को सदर मुमलिकत के नोटिस में लाना चाहता था लेकिन मैंने सोचा कि इस सिलसिले में पहले तुमसे बात कर ली जाए। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होते हुए पूछा। अच्छा किया है जो आपने अभी ये रिपोर्ट सदर साहब को पेश नहीं की है। अगर आप ऐसा करते तो यहाँ मौजूद काफ्रिस्तानी एजेंटों को भी इसकी भनक लग जाती कि वो जजीरा कॉलैंड में जो असलहा साजी की खुफिया फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं उसकी खबर हमें मिल चुकी है। ऐसी सूरत में काफ्रिस्तान इस जजीरे से अपना तमाम सामान समेट कर ले जाता और फिर वो ये काम किसी ऐसी जगह शुरू कर देता जिसके बारे में शायद हमें कोई खबर ही न मिलती। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस जजीरे और जजीरे पर तैयार होने वाली खौफनाक हॉटगन का बरवक्त पता चल गया है और ये सब सरवाइली के मरहून मिन्नत है। अगर ये स्पाई सैटेलाइट से इस जजीरे का सर्च न करते तो शायद ये भी इस जजीरे में कोई दिलचस्पी न लेते और हमें इल्म ही न होता कि काफ्रिस्तान असलहे की दौड़ में इस कदर आगे निकल चुका है जिससे हम उसके सामने सर भी नहीं उठा सकते थे। ये काम चूंकि सरवाइली और उनकी एजेंसी ने किया है इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये इस कदर नामसाइद हालात के बावजूद खुफिया तौर पर पाकिस्तान आए और इन्होंने हमें काफ्रिस्तान की भयानक साजिश से आगाह करने के लिए अपनी एजेंसी से इतना काम कराया। मैं वाकई आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ सर वाइली, बेहद शुक्रगुजार, और मैं अपनी अहमकाना सरगर्मियों के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ जो मेरी फितरत बन चुकी है। लेकिन बहरहाल मेरी बातों से आपको जो कोफ्त हुई है उसके लिए मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, इमरान ने खिलाफ तवक्का बड़े माजरत भरे लहजे में कहा। और इमरान को ऐसे अल्फाज अदा करते देख कर सर सुल्तान हैरान रह गए, क्योंकि इमरान से किसी किस्म की माजरत और खास तौर पर शर्मिंदा होने की तवक्का उनके तसव्वुर में भी ना थी। मुझे आपके बारे में सर सुल्तान ने पहले ही आगाह कर दिया था मिस्टर इमरान, लेकिन चूंकि मैं आपसे पहली बार मिला हूँ और मुझे इन बातों की आदत नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बातों पर वाकई गुस्सा आ रहा था, सर वाइली ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल आपने ये राज पहुँचा कर मुझ पर ही नहीं बल्कि एशिया की करोड़ों आवाम पर एहसान किया है सर वाइली, जिसके लिए मैं आपका अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान ने उसी संजीदगी से कहा। पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है।